डॉक्टर डेव मैथ्यूसन, रहस्योद्घाटन, व्याख्यान 18। प्रकाशित वाक्य 12-13, ड्रैगन और दो जानवर। 2024, डेव मैथ्यूसन और टेड हिल्डेब्रांट। यह रहस्योद्घाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 18, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12-13, ड्रैगन और दो जानवर हैं। हमने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 को देखा है और मैंने सुझाव दिया है कि इसका प्राथमिक कार्य कुल मिलाकर चर्च के संघर्ष की वास्तविक प्रकृति को प्रदर्शित करना या दिखाना है। यह सच्चे सर्वनाशकारी ढंग से पीछे है जो घूंघट या पर्दा उठाता है ताकि लोग देख सकें, पाठक अनुभवजन्य वास्तविकता के पीछे देख सकें, एक और वास्तविकता देख सकें जो कि उनकी वास्तविकता है जिसे स्वर्गीय वास्तविकता को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है। अब अध्याय 12 उठाता है पर्दा इसलिए ताकि लोग रोमन साम्राज्य के साथ अपने सांसारिक संघर्ष के पीछे के रहस्य को देख सकें और उसकी वास्तविक प्रकृति को देख सकें। उनके संघर्ष के पीछे शैतान का न केवल मसीहा को नष्ट करने का प्रयास है बल्कि अब मसीहा के लोगों को भी नष्ट करने का प्रयास है। लेकिन अध्याय 12 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शैतान पहले ही पराजित हो चुका है और मसीह का राज्य पहले ही शैतान के राज्य पर आक्रमण कर चुका है और शैतान के पास अब भगदड़ मचाने और परमेश्वर के लोगों पर कहर ढाने के लिए बहुत कम समय है। इसलिए अब वे अपनी स्थिति को एक नई रोशनी और नए परिप्रेक्ष्य में देखने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। लेकिन मैं अध्याय 12 के साथ भी क्या करना चाहता हूँ, जूम आउट करके पूरे अध्याय को समग्र रूप से देखना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 को समझने के लिए दो और महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नजर डालना चाहता हूँ। जहाँ तक जॉन के पास कुछ विचार और कुछ धारणाएं हैं जब उसने उस महिला का यह दृश्य रिकॉर्ड किया होगा जो एक बेटे से गर्भवती है और बेटे का पीछा किया जा रहा है, उस महिला का पीछा एक अजगर द्वारा किया जा रहा है। एक सांप की आकृति जो बेटे को निगलने की कोशिश करती है और ऐसा करने से निराश या विफल हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 की यह कहानी एक ऐसी महिला के बारे में कई सामान्य ग्रीक या रोमन मिथकों को प्रतिबिंबित करती है जो एक बच्चे के साथ है और अब एक अजगर या एक सर्प प्रकार की आकृति उसका पीछा कर रही है जो बच्चे को निगलने की कोशिश करती है और फिर बच्चे को आमतौर पर इस नागिन आकृति के खतरों से बचाया जाता है। अक्सर कहानी में इन कहानियों के कुछ संस्करणों में ऐसा होता है कि बेटा बड़ा हो जाता है और वापस आता है और वास्तव में ड्रैगन को मार डालता है या नागिन जैसी आकृति को मार डालता है। उदाहरण के लिए लेटो और अपोलो और पायथन नामक एक कहानी है। इसकी शुरुआत पायथन से होती है जिसे कहानी में एक ड्रैगन के रूप में वर्णित या चित्रित किया गया है जो लेटो का पीछा करता है जो एक देवी है और पाइथन उसे मारने के लिए उसका पीछा करता है। लेटो फिर एक बेटे को जन्म देता है जो भगवान अपोलो है और बाद में अपोलो वापस आता है और पाइथन को हरा देता है। इस तरह की कई कहानियां हैं और जॉन की कहानियां उनमें से किसी से भी बिल्कुल मिलती जुलती नहीं लगती हैं, जिससे पता चलता है कि जॉन जरूरी नहीं कि एक विशिष्ट कहानी के बारे में सोच रहा हो जिसके बारे में वह या उसके पाठक जानते होंगे या ग्रीक या रोमन में आम होंगे। दुनिया जॉन की कहानी इस मायने में बहुत अलग है कि उसकी कल्पना ऐतिहासिक रूप से घटित किसी चीज ईसा मसीह के वास्तविक जन्म को इंगित करती है या उसका प्रतिनिधित्व करती है, जबकि इनमें से कई अन्य कहानियां देवताओं के बारे में कहानियां हैं और जरूरी नहीं कि वे विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करती हों। हालांकि ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जॉन इनमें से किसी विशेष कहानी पर आधारित है, लेकिन हो सकता है कि वह इस प्रकार की कहानी और कहानी के कई संस्करणों के बारे में जानता हो जिससे उसके पाठक परिचित रहे होंगे। अब ऐसा लगता है कि जॉन इनका सहारा लेकर इन कहानियों के वास्तविक अवतार को प्रदर्शित कर रहे हैं, जिन्हें ग्रीको रोमन साम्राज्य में लोग पहचानते हैं, मानते हैं या जानते हैं। जॉन ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा, आइए मैं आपको इसका सच्चा संस्करण दिखाता हूँ और अब इसका उपयोग ऐतिहासिक रूप से यह दर्शाने के लिए करता हूँ कि यीशु मसीह के व्यक्तित्व में क्या हुआ और साथ ही उन चर्चों के उत्पीड़न के साथ क्या हो रहा है जिन्हें वह संबोधित कर रहा है। तो फिर जॉन आवश्यक रूप से इन कहानियों से सहमत नहीं है या उनकी सदस्यता ले रहा है, केवल कहानियों का उपयोग कर रहा है क्योंकि वे वर्णन करने के लिए उपयुक्त हैं कि क्या हो रहा है, बल्कि उसके लिए इन कहानियों का सही संस्करण या सही विवरण प्रदर्शित करना भी है जो उनके पास हो सकता है के बारे में जाना जाता है। लेकिन किसी भी मामले में जॉन शायद इन कहानियों से कुछ सामान्य रूपांकनों या विचारों को आकर्षित करता है। फिर उनमें से अधिकांश एक ऐसी महिला से संबंधित हैं जो एक बेटे को जन्म देने वाली है और एक ड्रैगन या सर्प प्रकार की आकृति से संबंधित है, और यह निश्चित रूप से बिल्कुल वैसा ही फिट बैठता है जैसा जॉन चित्रित कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जॉन ने जो पृष्ठभूमि तैयार की है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण, शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है, और यह पुराने नियम की एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। हम पहले ही देख चुके हैं कि जॉन पुराने नियम में एक ड्रैगन या सर्प प्रकार की आकृति, एक समुद्री राक्षस के चित्रण से अवगत है जो राष्ट्रों या दुष्ट शासकों का प्रतिनिधित्व करता है जो भगवान के लोगों पर अत्याचार करते हैं और जो भगवान का विरोध करते हैं, और उस ईश्वर को उन्हें हराने या इन ड्रैगन प्रकार की आकृतियों को मारने के रूप में चित्रित किया गया है। हम देखते हैं कि भजन 74 में, यशाया अध्याय 51 श्लोक 9 में और अन्य ग्रंथ भी हैं जो एक शासक या साम्राज्य को ड्रैगन प्रकार या सर्प प्रकार की भाषा में चित्रित करते हैं, और भगवान का उन ड्रैगन को मारना और हराना राष्ट्र या दमनकारी शासक की हार का प्रतीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक अधिक विशिष्ट कहानी छिपी हुई है। यह जॉन का एक और उदाहरण हो सकता है, इस बार एक ऐसी कहानी पर जो ग्रीको रोमन पृष्ठभूमि से मेल खाती है, जैसे लाटो, अपोलो, पायथन और अन्य ग्रीको रोमन कहानियां। जॉन एक ऐसी कहानी बना रहा है या एक ऐसी कहानी बना रहा है जो ग्रीको रोमन पृष्ठभूमि से मिलती जुलती है, लेकिन पुराने नियम की कहानी या पुराने नियम के पाठ से भी मेल खाती है। मेरे मन में जो प्राथमिक पाठ है वह पुराने नियम की शुरुआत तक जाता है और वह उत्पत्ति की पुस्तक है, मुख्य रूप से उत्पत्ति अध्याय 3 और छंद 15 और 16 तथाकथित प्रोटो इवेंजेलियन, जैसा कि कुछ लोगों ने कहा है, उसे बुलाया। लेकिन मानवता के निर्माण के बाद और आदम और हव्वा को एक बगीचे में रखकर और उन्हें एक निश्चित पेड़, ज्ञान और बुराई के पेड़ का फल न खाने की ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के परिणामों के खिलाफ चेतावनी दी, एक सांप ईव को धोखा देता है और फिर आदम ने उस पेड़ का फल खा लिया जिससे उन पर श्राप आ गया, जैसा कि परमेश्वर ने वादा किया था कि ऐसा होगा। फिर पद 15 से शुरू करते हुए भगवान स्थिति को संबोधित करते हैं। भगवान सबसे पहले सांप, शैतान को संबोधित करना शुरू करते हैं और फिर भगवान हव्वा को संबोधित करते हैं। श्लोक 15 से आरंभ करते हुए भगवान सांप को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में शत्रुता पैदा करूंगा। वह तुम्हारा सिर कुचल डालेगा और तुम उसकी एड़ी पर वार करोगे या उसे कुचल डालोगे। पद 16 में उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी प्रसव पीड़ा को बहुत बढ़ा दूंगा, तुम कष्ट सहकर बच्चों को जन्म दोगी, तेरी अभिलाषा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। अब मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दें कि उत्पत्ति 3:15 और 16 में इन दो छंदों की मुख्य विशेषताएं इस कहानी में प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में कैसे उभरती हैं। वास्तव में हम पाएंगे कि पूरे प्रकाशित वाक्य में कई स्थानों पर ऐसा हो रहा है। यह सिद्धांत जैसा आरंभ में था वैसा ही अंत में भी रहेगा, और इसलिए हम जॉन को अक्सर उत्पत्ति से रूपांकनों का चित्रण करते हुए देखेंगे, जैसा कि पहली रचना में और बिल्कुल शुरुआत में सच था, जिसे अंत में एक अर्थ में फिर से दोहराया जाएगा, जैसा कि शुरुआत में था इसलिए यह अंत में होगा। इसलिए उदाहरण के लिए अध्याय 12 में ध्यान दें, और विशेष रूप से छंद 3-9 में हम महिला और अजगर के बीच दुश्मनी की कहानी पाते हैं, जैसा कि हम उन दोनों का वर्णन पाते हैं। फिर ड्रैगन महिला का पीछा कैसे करता है, इसकी कहानी बताई गई है। उस भजन के बाद भी श्लोक 10 से शुरू होकर और उस भजन के बाद हम पाते हैं कि अजगर अभी भी महिला का पीछा कर रहा है, हालांकि वह निर्गमन भाषा में रेगिस्तान में चली गई है और संरक्षित है। लेकिन उत्पत्ति 3:15 का वह भाग जो अजगर और स्त्री या सांप और स्त्री के बीच शत्रुता का वादा करता है, अब यहां उभर कर आता है। और वैसे ध्यान दें कि जॉन स्वयं हमें उत्पत्ति 3 की ओर वापस खींचता प्रतीत होता है, जब प्रकाशित वाक्य 12:9 में वह एक बिंदु बताता है। वह इस ड्रैगन की पहचान शैतान या शैतान कहे जाने वाले प्राचीन सांप के रूप में करने के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है, जो पूरी दुनिया को भटकाता है। धोखा देना या गुमराह करना बिल्कुल वही था जो शैतान ने उत्पत्ति 3 में ईव और एडम के संबंध में किया था। लेकिन ध्यान दें कि इस ड्रैगन की पहचान प्राचीन सर्प या पुराने सर्प के रूप में है, जो स्पष्ट रूप से उत्पत्ति अध्याय 3 से जुड़ा है। तो सर्प और स्त्री, उत्पत्ति 15 से सर्प और स्त्री के बीच संघर्ष या शत्रुता कहानी के पीछे है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में स्त्री का पीछा करने वाला अजगर। सांप ने उसकी एड़ी को डंस लिया। हम फिर से अध्याय 12:9 में पाते हैं, ड्रैगन आकृति जो शैतान है बेटे का पीछा करती है और उसे निगलने की कोशिश करती है। और बाद में विशेष रूप से अध्याय 12 के श्लोक 17 में अजगर महिला की संतानों, उसके वंश के पीछे कहर बरपाने के लिए जाएगा, ताकि वह हिस्सा जहां सांप उसके सिर या महिला की संतान के सिर को काटता है, वह उत्पत्ति अध्याय 12 में स्पष्ट रूप से मौजूद है। यह भी ध्यान दें कि उत्पत्ति के अध्याय 3 श्लोक 16 में यह कहा गया है कि महिला प्रसव पीड़ा के माध्यम से बच्चे को जन्म देगी, दर्द के माध्यम से ही वह संतान पैदा करेगी। ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 श्लोक 2 में महिला का वर्णन कैसे किया गया है। वह गर्भवती थी और दर्द से कराह रही थी। फिर से उत्पत्ति अध्याय 3:16 में उस मूल भाव को प्रतिबिंबित करते हुए महिला की संतान का संदर्भ हम पहले ही देख चुके हैं, कई बार आता है, न केवल बेटे के रूप में बल्कि श्लोक 10-12 में उस भजन खंड के बाद, विशेष रूप से श्लोक 14 से शुरू करते हुए अजगर अब महिला का रेगिस्तान में पीछा करता है। वह उसका पीछा करने से निराश हो गया है। और फिर अध्याय 12 के अंत में अजगर स्त्री की संतान या वंश के पीछे चला जाता है। तो यह वादा कि उसकी संतान, उसकी संतानों, उत्पत्ति 3 में ड्रैगन या सांपों के बीच शत्रुता होगी, और उसकी संतान को प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 के अंत में उसकी संतानों के पीछे जाने वाले ड्रैगन में भी दर्शाया गया है। अब उत्पत्ति 3 में वादे का हिस्सा यह था कि न केवल सांप या शैतान और स्त्री के बीच, बल्कि उसकी संतान और उसकी संतान के बीच भी शत्रुता होगी। हमने अध्याय 12 में महिला की संतानों का स्पष्ट उल्लेख देखा है, जिसका ड्रैगन अध्याय के अंत में पीछा करता है, और उसकी संतान वह पुत्र जिसका उसने पीछा किया था लेकिन उसे निगलने में सक्षम नहीं होने के कारण विफल हो गया था, वह अपने शिकार से वंचित हो गया। उत्पत्ति अध्याय 3:15 से अजगर की संतान या सांप की संतान कहां होती है? क्योंकि फिर से उत्पत्ति 3 वादा करता है कि उसकी, ड्रैगन की संतान या सांप की संतान और उसकी संतान के बीच संघर्ष होगा। सर्प की संतान कहाँ होती है? मेरा सुझाव है कि यहीं पर अध्याय 3 आता है, दो जानवरों के रूप में जो ड्रैगन से मिलते जुलते हैं, और यहाँ तक कि उनका वर्णन भी किया गया है और उन्हें ड्रैगन से अधिकार प्राप्त है। दूसरे शब्दों में अध्याय 13 में हमें दो जानवरों के रूप में दो ड्रैगन जैसी आकृतियों से परिचित कराया जाएगा, जिनका वर्णन बिल्कुल ड्रैगन की तरह किया गया है। ध्यान दें कि पहले वाले को ड्रैगन की तरह 7 सिर और 10 सींग वाला बताया गया है, और यह स्पष्ट करता है कि उसे अधिकार दिया गया है। अध्याय 13 में पहले जानवर को ड्रैगन द्वारा अधिकार दिया गया है, और अध्याय 13 के दूसरे भाग में दूसरा जानवर भी ऐसा ही है। दूसरा जानवर भी एक जानवर जैसा ड्रैगन प्रकार का चित्र है। यहां तक कि पद 11 में वह एक अजगर की तरह बोलता है, और वह अजगर और पहले पशु के अधिकार का प्रयोग करता है। इसलिए मैं प्रस्तावित करूंगा कि अध्याय 13 में दो जानवर प्रकाशित वाक्य अध्याय 3, मुझे क्षमा करें, उत्पत्ति अध्याय 3 और श्लोक 15 से अजगर की संतान है, अजगर का बीज। और अब हम प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 में ड्रैगन के बीज को देखते हैं। जैसा कि हम वहां पहुंचकर प्रदर्शित करेंगे, मुझे लगता है कि यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये दो पशु आकृतियां ड्रैगन की संतानें वे साधन हैं जिनके द्वारा ड्रैगन महिला की संतानों के पीछे जाता है। तो अध्याय 12 उत्पत्ति 3 की पूर्ति में अजगर के स्त्री की संतान के पीछे जाने के साथ समाप्त होता है, लेकिन अब अध्याय 13 हमें यह बताने जा रहा है कि वह स्त्री की संतान पर कैसे हमला करता है। अजगर और स्त्री की संतान के बीच कैसी दुश्मनी? अध्याय 13 में उसकी संतानों के माध्यम से ये दो पशु आकृतियां हैं। उत्पत्ति अध्याय 3 में वर्णित कहानी का एक और दिलचस्प हिस्सा है, और वास्तव में जब कोई पुराने नियम के बाकी हिस्सों को पढ़ता है तो वह यह देखना शुरू कर सकता है कि उत्पत्ति 3 छंद 15 और 16 बीच पर जोर देने के माध्यम से कैसे काम करना शुरू करते हैं। यहां तक कि इब्राहिम और दाऊद के वंश में भी बीज और संतान पर जोर दिया गया, लेकिन मुझे लगता है कि उन ग्रंथों में भी जो हमने देखा है, जैसे भजन और यशायाह की किताब और अन्य जगहों पर जहां आपके पास यह जानवर, यह समुद्री राक्षस या ड्रैगन प्रकार की आकृति विभिन्न राष्ट्रों और दमनकारी शासकों के पीछे पड़ी हुई है, ताकि अंततः आप ड्रैगन की संतानों और महिला की संतानों के बीच यह संघर्ष पुराने नियम से ही जारी है। अब उत्पत्ति 3 श्लोक 15 और 16 में वर्णित इस कहानी की दूसरी विशेषता यह है कि पुत्र स्पष्ट रूप से अपना सिर कुचल देगा। दिलचस्प बात यह है कि जब हम सवाल पूछते हैं तो हम उसे कहां देखते हैं? ऐसा नहीं है कि जॉन को कहानी की हर आखिरी विशेषता को चुनना है, लेकिन हम कुचले हुए सिर की इस धारणा को कहां देखते हैं? मैं आपको फिर से सुझाव दूंगा, जब आप अध्याय 13 को देखें, अध्याय 13 और श्लोक 3 में पहला जानवर जो ड्रैगन की संतान है, पहले जानवर का वर्णन इस तरह किया गया है, सिरों में से एक 7 सिरों वाला जानवर, ऐसा लगता है कि एक सिर पर कोई घातक घाव था, लेकिन वह घातक घाव ठीक हो गया था। जब हम अध्याय 13 पर पहुंचेंगे तो हम इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन सिर पर घातक घाव होने का यह विचार शायद कुछ चीजें करता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह रहस्योद्घाटन से भी जुड़ रहा है, या मैं हूं। क्षमा करें, उत्पत्ति अध्याय 3 और प्रतिज्ञा की सांप का सिर कुचल दिया जाएगा। अब हम जानवर के रूप में सांप के सिर को कुचला हुआ पाते हैं, जानवर के एक सिर पर घातक प्रहार या घातक घाव किया गया था, लेकिन जानवर उससे उबर चुका है। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि जॉन भी स्पष्ट रूप से चित्रित कर रहा है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 श्लोक 9 में जॉन स्पष्ट रूप से ड्रैगन को पुराने समय के प्राचीन सांप के रूप में वर्णित करके हमें उत्पत्ति 3 की ओर इंगित करता है। जॉन शायद हमारे लिए उत्पत्ति अध्याय 3 की कहानी के प्रकाश में इस पाठ को पढ़ने का इरादा रखते हैं, और शायद पुराने नियम के बाकी सभी हिस्सों में भी, जो संघर्ष पुराने नियम के बाकी हिस्सों में चलता है। लेकिन विशेष रूप से उत्पत्ति 3 में छंद 15 और 16 इस संघर्ष को पढ़ने के लिए उपपाठ या पृष्ठभूमि भी प्रदान करते हैं। तो मुझे लगता है जॉन ने जो किया है, उसने जो देखा उसका वर्णन करते हुए अब अपनी दृष्टि को इस तरह से निर्मित किया है जो एक बार फिर से एक से अधिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। यह कुछ ग्रीको रोमन कहानियों का उदाहरण है जिनसे पाठक परिचित होंगे। बेटे को जन्म देने वाली एक महिला देवी और उनका पीछा करने वाली ड्रैगन प्रकार की आकृति के बीच संघर्ष के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से यहूदी और पुराने नियम की पृष्ठभूमि के साथ उत्पत्ति अध्याय 3 छंद 15 से 19 तक प्रतिध्वनित होता है। तो फिर विशेष रूप से उत्पत्ति 3 पृष्ठभूमि की ओर संकेत करने का उद्देश्य पाठकों को उनकी स्थिति को एक नए परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद करना होगा। रोम के साथ उनके संघर्ष को देखने के लिए पहली शताब्दी में चर्च को रोमन साम्राज्य के साथ जिस संघर्ष का सामना करना पड़ा और ईसा मसीह के वापस आने तक किसी अन्य शताब्दी में उन्हें जिस संघर्ष का सामना करना पड़ा, यह संघर्ष कोई नई बात नहीं है। यह बस एक सदियों पुराने संघर्ष का हिस्सा है जो सृष्टि से लेकर उत्पत्ति अध्याय 3 तक चला जाता है। अब उत्पत्ति 3 में शुरू हुआ संघर्ष रोमन के साथ उनके द्वारा सामना किए गए शारीरिक संघर्ष के रूप में फिर से सामने आता है। साम्राज्य, वह संघर्ष पुराने नियम में कई बिंदुओं पर सामने आया था और अब रोम के साथ उनके द्वारा किए गए संघर्ष में फिर से सामने आ रहा है। तो एक बार फिर वे अपनी स्थिति को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। जब वे बाहर देखते हैं और देखते हैं कि साम्राज्य में क्या चल रहा है, तो वे केवल वही देखते हैं जो अनुभवजन्य दृष्टिकोण से चल रहा है। लेकिन अब पर्दा उठाकर देखते हैं, नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। यह बस एक सदियों पुराने संघर्ष का हिस्सा है जो सृजन तक चला जाता है। यह महिला के वंश को नष्ट करने और महिला को नष्ट करने के साथ साथ उसकी संतानों को भी नष्ट करने के शैतान के सदियों पुराने प्रयास का हिस्सा है। हालांकि प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 का मुद्दा यह है कि संघर्ष का समाधान पहले ही हो चुका है। मौत का झटका दिया गया है। कुचलने वाले घाव का इलाज पहले ही किया जा चुका है। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण शैतान पहले ही पराजित हो चुका है। शैतान को पहले ही हरा दिया गया है और बाहर निकाल दिया गया है और अब वह जानता है कि उसका समय कम है। तो फिर लोगों को डरने की क्या जरूरत है? पाठकों को, विशेषकर उन्हें जो अपने वफादार गवाह के कारण कष्ट सह रहे हैं, किस बात का डर है? क्योंकि अब वे अपनी स्थिति को एक नई रोशनी में देख सकते हैं। और जो लोग समझौता करने के लिए प्रलोभित हैं, उन्हें अब यह एहसास होना चाहिए कि वास्तव में क्या दांव पर लगा है और वे लड़ाई में किसके पक्ष में होना चाहते हैं। अध्याय 12 से संबंधित एक अन्य मुद्दा हमें यह समझने में मदद कर सकता है कि अभी जो कहा गया है उसके आलोक में क्या हो रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और 13 भी, लेकिन विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य 12 को इस अर्थ में देखा जा सकता है, और मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जॉन का यही इरादा था, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से यह संबंध बनाने में मददगार हो सकता है। लेकिन प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 हमारे दृष्टिकोण से एक अर्थ में उस प्रसिद्ध आध्यात्मिक में इफिसियों की पुस्तक के अंत में पॉल ने इफिसियों की पुस्तक और श्लोक 12 अध्याय 6 में जो कहा उस पर एक विस्तारित टिप्पणी के रूप में देखा जा सकता है। युद्ध मार्ग जहां पॉल ईसाई जीवन को स्वर्गीय क्षेत्रों में शासकों और अधिकारियों के खिलाफ लड़ाई के रूप में वर्णित करता है, वह उस पर ईसाई प्रतिक्रिया को कवच के टुकड़ों के संदर्भ में दर्शाता है जो कुछ गुणों से पहचाने जाते हैं। अध्याय 6 श्लोक 12 में एक दिलचस्प वाक्यांश है जहां पॉल कहता है, आपकी लड़ाई मांस और रक्त के साथ नहीं है बल्कि स्वर्गीय क्षेत्रों के शासकों और अधिकारियों के साथ है। सबसे पहले मुझे लगता है कि स्वर्गीय क्षेत्र के शासकों और अधिकारियों का संदर्भ राक्षसी आध्यात्मिक प्राणियों का संदर्भ है। मुझे लगता है कि पॉल पूरे इफिसियों में इस शब्द का उपयोग करता है। लेकिन दूसरा, जब पॉल कहता है कि आपकी लड़ाई मांस और खून के खिलाफ नहीं है बल्कि स्वर्गीय क्षेत्रों के शासकों और अधिकारियों के खिलाफ है, तो मुझे नहीं लगता कि वह दो अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहा है। वह हमारे सामने आने वाले किसी भी शारीरिक संघर्ष को अपमानित कर रहा है। इसलिए पॉल यह नहीं कह रहा है कि आपकी लड़ाई मांस और खून के खिलाफ नहीं है, अर्थात आपके सामने आने वाली किसी भी शारीरिक लड़ाई या शारीरिक संघर्ष पर ध्यान केंद्रित न करें या उसके बारे में चिंता न करें। फिर विशेष रूप से ईसाइयों के लिए जो ग्रीको रोमन दुनिया के संदर्भ में अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं, पॉल इसे नीचा नहीं दिखा रहा है, कह रहा है कि वे महत्वहीन हैं और वे महत्वहीन हैं और उन पर ध्यान न दें। वे वास्तविक नहीं हैं, वे महत्वपूर्ण लड़ाइयां नहीं हैं, बल्कि इसके बजाय आपको एक अलग लड़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है और वह है स्वर्गीय दुनिया के साथ लड़ाई। मुझे नहीं लगता कि पॉल बिल्कुल ऐसा कह रहा है। इसके बजाय मुझे लगता है कि पॉल कुछ वैसा ही कह रहा है जैसा जॉन प्रकाशित वाक्य 12 में कर रहा है। जब पॉल कहता है कि आपकी लड़ाई मांस और रक्त के खिलाफ नहीं है बल्कि शासकों और अधिकारियों के खिलाफ है, तो मुझे लगता है कि पॉल महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण साबित करने में सर्वनाशकारी बात कर रहा है। सच है क्योंकि वे लड़ाइयां सांसारिक स्तर पर हैं, उनके पीछे एक अधिक महत्वपूर्ण लड़ाई चल रही है जो उन लड़ाइयों को प्रभावित करती है। तो क्या आप देख रहे हैं कि पॉल यह नहीं कह रहा है उन पर ध्यान न दें और इस पर ध्यान केंद्रित करें? वह उन्हें वास्तविक संघर्ष और रोमन साम्राज्य के साथ सामना किए जाने वाले भौतिक संघर्षों की वास्तविक प्रकृति को समझने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। इनके पीछे एक बड़ा संघर्ष छिपा है। आपकी लड़ाई मांस और खून से नहीं है। आपकी प्राथमिक लड़ाई सिर्फ वह नहीं है जिसका आप भौतिक क्षेत्र में सामना करते हैं, यह उतनी ही सच्ची और महत्वपूर्ण है, बल्कि इफिसियों के अपने पाठकों को इसकी प्रकृति को समझने में मदद करना अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तविक सर्वनाशकारी अंदाज में यह देखना कि एक लड़ाई है, उसके पीछे वह युद्ध किया जा रहा है, और प्रकाशित वाक्य 12 बिल्कुल यही कर रहा है। वह कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई मांस और खून से नहीं है। आपकी लड़ाई सिर्फ रोमन साम्राज्य और डोमिनिशियन और सीजर और रोम के सम्राट और सभी स्थानीय अधिकारियों और एशिया माइनर के चर्चों, एशिया माइनर के शहरों के साथ नहीं है जो आप पर सहमत होने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यह आपकी सच्ची लड़ाई नहीं है। इसके पीछे एक युद्ध है जिसे अब जॉन प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 में चित्रित करता है। वह शैतान की लड़ाई है, मसीहा को हराने का शैतान का प्रयास, वह लड़ाई जिसने अब शैतान को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है और स्त्री और उसके वंश को नष्ट करने का उसका प्रयास है। तो यह एक स्वर्गीय आध्यात्मिक लड़ाई है, बुराई की ताकतों के साथ लड़ाई जो उस सच्चे संघर्ष के पीछे है जिसका अब प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में चर्च सामना कर रहे हैं। तो यह प्रकाशित वाक्य 12 को फिर से एक पाठ बनाता है जो संघर्ष की वास्तविक प्रकृति को उजागर करने और उजागर करने के लिए कार्य करता है, चर्चों को यह दिखाने के लिए कि आपकी लड़ाई केवल मांस और रक्त के साथ नहीं है, रोमन सरकार के साथ है, बल्कि आपकी लड़ाई शासकों और अधिकारियों के साथ है, स्वर्गीय क्षेत्र, मुख्य रूप से स्वयं शैतान, उसका प्रयास जो सृष्टि से लेकर परमेश्वर के लोगों और परमेश्वर के राज्य को नष्ट करने का प्रयास करता है। और अब उस नए ज्ञान और परिप्रेक्ष्य के साथ पाठक अपनी स्थिति को एक नई रोशनी में देखने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं। अब यह हमें अध्याय 13 पर लाता है। अध्याय 12 वास्तव में समाप्त होता है या यह इस पर निर्भर करता है कि संस्करण इसे कितने अलग अलग विभाजित करते हैं। अध्याय 13 शुरू होता है या अध्याय 12 समाप्त होता है। NIV में अनुच्छेद विभाजन वास्तव में श्लोक 1 में अध्याय 13 पर है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम अध्याय 12 और 13 को कहां विभाजित करते हैं। लेकिन अध्याय 13 एक समुद्र के किनारे खड़े ड्रैगन से शुरू होता है। मुझे लगता है कि यहाँ क्या हो रहा है, ड्रैगन फिर दो सहायकों को बुलाने के लिए समुद्र के किनारे खड़ा है। इसलिए ड्रैगन महिला की संतान को आगे बढ़ाने में उसकी मदद करने के लिए दो व्यक्तियों को बुलाने जा रहा है। तो ध्यान दें कि अध्याय 12 महिला को पाने के ड्रैगन के असफल प्रयास के साथ समाप्त होता है। वह पहले ही पुत्र यीशु मसीह में असफल हो चुका है। अब वह महिला के पीछे जाता है। वह संरक्षित है। अब वह उसकी संतान के पीछे जाता है। और हमने कहा कि महिला और उसकी संतान दोनों संभवतः दो अलग अलग दृष्टिकोणों से चर्च और भगवान के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ओर उन्हें संरक्षित करके रखा जाता है, लेकिन दूसरी ओर वे अभी भी कम से कम पहली शताब्दी में रोमन सरकार के रूप में शैतान के हाथों पीड़ा और उत्पीड़न के अधीन हैं। अब ड्रैगन समुद्र के किनारे खड़ा है और मुझे लगता है कि उसका एकमात्र इरादा दो सहायकों को बुलाना है जो महिला की संतानों के पीछे जाने के उसके कार्य में उसकी मदद करेंगे। और मैं आपको यह भी सुझाव दूंगा कि संभवतः हमें प्रकाशित वाक्य के अध्याय 12 या मुझे खेद है अध्याय 13 को कालानुक्रमिक रूप से अध्याय 12 के बाद नहीं पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अध्याय 13 अधिक विस्तार से वर्णन करने का एक और तरीका है कि यह कैसा है शैतान स्त्री की संतान के पीछे लग जाता है। ऐसा कैसे है कि शैतान महिला की संतानों पर कहर बरपाता है, भले ही वह संरक्षित हो फिर भी उसकी संतानों को सताया जाता है और शैतान को कहर बरपाने की अनुमति दी जाती है। वह उसके द्वारा कैसे किया जाता है? वह अध्याय 13 में इन पशु आकृतियों की मदद से ऐसा करता है। तो अध्याय 13 और 12 में, विशेष रूप से अध्याय 12 के दूसरे भाग में, पहले भाग में हमने कहा कि उनमें से अधिकांश पिछली घटनाओं, विशेष रूप से यीशु मसीह के जन्म को संदर्भित करता है। अध्याय 12 का शेष भाग हमें वर्तमान तक लाता प्रतीत होता है। तो मुझे लगता है कि अध्याय 13 शेष अध्याय 12 की बिल्कुल उन्हीं घटनाओं का वर्णन करने का एक और तरीका है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अध्याय 12 पहले घटित होता है और उसके बाद कालानुक्रमिक रूप से अध्याय 13 घटित होता है। अध्याय 13 केवल अधिक विस्तार से वर्णन कर रहा है कि शैतान अध्याय 12, 14 और 17 में जो कुछ करता है उसे कैसे पूरा करता है। ऐसा कैसे है कि उसे महिला की संतानों पर अत्याचार करने की अनुमति दी गई है? वह अध्याय 13 में दो एजेंटों के माध्यम से इसे पूरा करता है। उनमें से एक एक राक्षस या जानवर है जो समुद्र से निकलता है। दूसरा एक राक्षस या जानवर है जो भूमि से बाहर आता है, और हम उस पर गौर करेंगे और एक क्षण में समझा देंगे। लेकिन ऐसा करने से पहले मैं अध्याय 13 पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले अध्याय 13 पद 1, और अजगर समुद्र के तट पर खड़ा था। तो अब वह अपनी मदद के लिए दो अन्य पशु आकृतियों, उत्पत्ति अध्याय 3:15 से उसकी दो संतानों को बुलाने के लिए तैयार है। और मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा। उसके 10 सींग और 7 सिर थे, उसके सींगों पर 10 मुकुट थे, और प्रत्येक सिर पर निंदा का नाम था। जो जानवर मैंने देखा वह तेंदुए जैसा दिखता था, लेकिन उसके पैर भालू जैसे और मुंह शेर जैसा था। अजगर ने जानवर को अपनी शक्ति, सिंहासन और महान अधिकार दिया। ऐसा लग रहा था कि जानवर के एक सिर पर घातक घाव था, लेकिन घातक घाव ठीक हो गया था। सारी दुनिया चकित हो गई और उस जानवर के पीछे पीछे चलने लगी। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने जानवर को अधिकार दिया था, और उन्होंने जानवर की भी पूजा की और पूछा कि जानवर जैसा कौन है और कौन उसके खिलाफ युद्ध कर सकता है। जानवर को घमंडी शब्द और निंदा करने और 42 महीने तक अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए मुंह दिया गया था। उसने परमेश्वर की निंदा करने और उसके नाम और उसके निवास स्थान और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला। उसे संतों के विरुद्ध युद्ध करने और उन पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी गई, और उसे हर कुल, लोग, भाषा और राष्ट्र पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सभी निवासी उस जानवर की पूजा करेंगे जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे गए हैं, जो उस मेमने से संबंधित है जो दुनिया के निर्माण से मारा गया था। अध्याय 5 का एक संदर्भ। वह जिसके पास कान है वह सुन ले। यदि किसी को बंधुवाई में जाना हो तो वह बंधुवाई में जाएगा। यदि किसी को तलवार से मारना हो तो वह तलवार से मारा जाएगा। इसके लिए संतों की ओर से धैर्यवान सहनशीलता और निष्ठा की आवश्यकता होती है। फिर मैंने एक और जानवर को धरती से बाहर आते देखा। उसके मेमने के समान दो सींग थे, परंतु वह अजगर के समान बोलता था। उसने अपनी ओर से पहले जानवर के सारे अधिकार का प्रयोग किया, और उसने प्रियवी और उसके निवासियों से उस पहले पशु की पूजा कराई जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था। जब उसने महान और चमत्कारी चिन्ह दिखाए, यहाँ तक कि स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाई और लोगों को दिखाया, क्योंकि उन चिन्हों के कारण उसे पहले जानवर की ओर से करने की शक्ति दी गई थी, उसने पृथ्वी के निवासियों को धोखा दिया। उसने उन्हें उस जानवर के सम्मान में एक मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया जो तलवार से घायल हो गया था और फिर भी जीवित था। उसे पहले जानवर की छवि में सांस देने की शक्ति दी गई ताकि वह बोल सके और उन सभी को मार डाला जाए जिन्होंने छवि की पूजा करने से इनकार कर दिया था। उसने हर किसी को, छोटे और बड़े, अमीर और गरीब, आजाद और गुलाम, अपने दाहिने हाथ पर या अपने माथे पर एक निशान लेने के लिए मजबूर किया ताकि कोई भी तब तक खरीद या बिक्री न कर सके जब तक कि उसके पास निशान न हो जो कि जानवर का नाम है या उसके नाम की संख्या। इसके लिए बुद्धि की आवश्यकता है। यदि किसी के पास समझ हो तो वह उस पशु का अंक गिन ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है। उसकी संख्या 666 है। अब इससे पहले कि हम दो जानवरों की आकृतियों पर थोड़ा और विस्तार से विचार करें, मुझे इस परिच्छेद के बारे में दो अवलोकन करने दीजिए। मैं दोनों जानवरों से संबंधित दो टिप्पणियां एक साथ करूंगा, और ये दोनों जानवर एक तरह से इस अध्याय के केंद्र बिंदु हैं। सबसे पहले, हमने पहले ही अध्याय 12 में ड्रैगन का संदर्भ देखा है, लेकिन अध्याय 11 में भी, जहां एक जानवर रसातल से बाहर आता है और दो गवाहों को मारने में सक्षम है, जिसके बारे में हमने कहा कि यह संभवतः संपूर्ण का प्रतीक है। साक्षी चर्च तो एक स्तर पर अध्याय 12 अध्याय 12 और 13 होने जा रहा है, मुझे कहना चाहिए न केवल 12 बल्कि 12 और 13, विशेष रूप से 13। अध्याय 11 में उस संक्षिप्त संदर्भ का एक और खुलासा होगा, जहां अध्याय 11 में दो गवाहों के बाद उनकी गवाही के समय के बाद श्लोक 7 से शुरू होता है, चीजें मोड़ लेने लगती हैं और एक जानवर रसातल से बाहर आता है और वह दो गवाहों को मारने में सक्षम होता है। अब हमारे पास अध्याय 13 में एक जानवर है जो समुद्र से बाहर आ रहा है, और मुझे लगता है कि संभवतः समुद्र और रसातल के बीच एक ही स्थान के संदर्भ में संबंध है। तो शायद यह जानवर समुद्र से बाहर आ रहा है, यह उसी चीज का संदर्भ है जो अध्याय 11 में हुआ था, केवल अब आपके पास अधिक विवरण है। अब लेखक अध्याय 11 में घटित घटनाओं को और भी अधिक विस्तार से बताने जा रहा है। हमने वहां और अध्याय 12 में देखा कि एक जानवर की आकृति या एक राक्षस प्रकार की आकृति विशेष रूप से समुद्र के साथ आमतौर पर बुराई और पूर्ण अराजकता और विकार की धारणा को संदर्भित करती है या उत्पन्न करती है और जो बुराई और दमनकारी है। हमने यह भी देखा कि पूरे पुराने नियम में लेखकों ने दमनकारी राष्ट्रों और सरकारों या शासकों को संदर्भित करने के लिए एक जानवर प्रकार की आकृति या एक समुद्री राक्षस प्रकार की आकृति का उपयोग किया था जो भगवान का विरोध करते थे और जो मूर्ति पूजक थे और जो भगवान के लोगों पर भी अत्याचार करते थे। एक उत्कृष्ट उदाहरण मिस्र है और कैसे मिस्र या फिरौन को अक्सर एक ड्रैगन प्रकार या सर्प प्रकार की आकृति, एक समुद्री राक्षस की आकृति, अराजकता और बुराई का प्रतीक और भगवान के लोगों पर अत्याचार करने के रूप में चित्रित किया जाता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि कई सर्वनाशों में एक से अधिक जानवरों का उल्लेख है। ऐसे कई सर्वनाश हैं जिनमें दो अलग अलग जानवरों या दो अलग अलग राक्षसों का उल्लेख है, एक जो पृथ्वी से आता है और एक जो भूमि से बाहर आता है। अक्सर एक जो बाहर आता है, मुझे क्षमा करें, एक जो समुद्र से बाहर आता है और एक जो जमीन से बाहर आता है। जो समुद्र से निकलता है उसे अक्सर लेविथान कहा जाता है। जो पृथ्वी या जमीन से निकलता है उसे अक्सर बहमोथ कहा जाता है। उदाहरण के लिए यहूदी सर्वनाशी ग्रंथों में से कुछ की ओर मुड़ने के लिए, जिनसे जॉन निस्संदेह परिचित था, और हमने पहले ही देखा है कि कुछ छवियां, जैसे कि संतों की संख्या, जिन्हें मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए और सताया जाना चाहिए, अंत से पहले पूरा हो गया। हो सकता है कि जॉन इसके लिए सर्वनाशकारी साहित्य का सहारा ले रहा हो, लेकिन एक हनोक अध्याय 60 और श्लोक 7-10 में ध्यान दें कि पाठ कहता है, उस दिन दो राक्षस अलग हो जाएंगे। एक राक्षस लेविथान नाम की एक मादा पानी के फव्वारों के ऊपर समुद्र की गहराई में रहने के लिए। तो रसातल और पानी के बीच संबंध पर ध्यान दें। और दूसरा बहमोथ नामक एक नर जो अदृश्य रेगिस्तान में या भूमि पर अपनी छाती रखता है। तो इस एक हनोक पाठ में दो राक्षसों लेविथान और बहमोथ के संदर्भ पर ध्यान दें, एक जिसका घर समुद्र के रसातल में है, दूसरा जिसका घर भूमि पर रेगिस्तान में है। हम 4 एज्रा में कुछ ऐसा ही पढ़ते हैं जो एक और महत्वपूर्ण और आम सर्वनाश है। 4 एज्रा अध्याय 6 और एज्रा के एक दर्शन में श्लोक 48 से शुरुआत, और एज्रा का कहना है कि मैं श्लोक 49 से पढ़ना शुरू करूंगा। तब तूने दो जीवित प्राणी उत्पन्न किए, एक का नाम तूने बहमोथ और दूसरे का लेविथान रखा, और संभवतः सृजन के समय आपने एक को दूसरे से अलग कर दिया। तूने सातवें भाग के लिए एक को दूसरे से अलग कर दिया, जहां पानी इकट्ठा हो गया था और उन दोनों को रोक न सका, और तूने बहमोथ को एक भाग दिया जो तीसरे दिन सूख गया था सृष्टि के अनुसार, अर्थात उस पर रहने के लिए, जहां 1,000 पहाड़ हैं और बहमोथ भूमि का है। परंतु तूने लेविथान को सातवां भाग अर्थात जलयुक्त भाग दिया और उनको रख छोड़ा कि जो चाहे और जब चाहे खाए। तो आपके पास यह कल्पना है और सृष्टि का वर्णन करने के संदर्भ में आपकी यह धारणा है कि सृष्टि के समय भगवान ने इन दो समुद्री जीवों या समुद्री राक्षसों को बनाया, उनमें से एक पानी या रसातल में रहता था, दूसरा भूमि पर रहता था। और यह इन दो समुद्री जीवों के बारे में जॉन के अपने विवरण के लिए मॉडल प्रदान कर सकता है। पुराने नियम के उन ग्रंथों के अलावा जिनका वह चित्रण कर रहा है, जॉन शायद इन सर्वनाशी ग्रंथों और दो समुद्री जीवों की इस धारणा को भी चित्रित कर रहा है, मुझे क्षमा करें, दो जानवरों की आकृतियां या दो राक्षस, एक समुद्र से और एक भूमि से। हालांकि हम जॉन को उन्हें एक बहुत ही विशिष्ट एप्लीकेशन देते हुए देखेंगे। जॉन न केवल अपने स्रोतों का गुलाम है, बल्कि वह उन्हें एक बहुत ही विशिष्ट अनुप्रयोग देता है। यह भी संभव है, यदि वे सर्वनाश संबंधी ग्रंथों को याद करते हैं, तो मैं पीछे हटता हूँ और समुद्र से आने वाले पहले जानवर के साथ साथ भूमि से आने वाले दूसरे जानवर का भी उल्लेख करता हूँ। लेकिन जानवर के समुद्र से बाहर आने से, जहाँ पहले जानवर रसातल से बाहर आया था, जॉन स्पष्ट रूप से इसे एक शैतानी राक्षसी प्रकार की आकृति के रूप में पहचानता है। समुद्र और जमीन के साथ एक और संभावित संबंध यह कहा जा सकता है कि यह पहला जानवर समुद्र से बाहर आता है। यह अगली टिप्पणी मानती है कि यदि आप पहली सदी में रहने वाले इस लेख को पढ़ने वाले ईसाई हैं, तो मुझे यह असंभव लगता है कि आप इस जानवर की पहचान रोमन साम्राज्य के अलावा किसी और चीज से करेंगे। और एक बार फिर पुराने नियम में इस जानवर के बुतपरस्त दमनकारी शासकों और शासनों के साथ पहचान करने के इतिहास के कारण यह सोचना लगभग असंभव है कि इसे पढ़ने वाला पहली सदी का ईसाई इसे दमनकारी शासन के साथ भी नहीं पहचान पाएगा। वह सम्राट जो पहली शताब्दी के दौरान अपने जीवन काल के दौरान नियंत्रण में था, और वह था रोमन साम्राज्य और उसका सम्राट। लेकिन दूसरी बात, एक समुद्र से और दूसरा जमीन से आने के कारण यह भी संभव है कि जॉन के मन में पुराने नियम और दो जानवरों लेविथान और हनोक और एजरा जैसी किताबों से सर्वनाश की पृष्ठभूमि हो। बहमोथ की समुद्र से निकलने वाले जानवर को कुछ ऐसा याद आया होगा जो समुद्र से अलग हो गया होगा या समुद्र के पार से उनके पास आया होगा, वह रोम और सम्राट ही है। जबकि जमीन के जानवर को शायद अपनी धरती पर कुछ याद आया होगा, ऐसा कहा जा सकता है, या एशिया माइनर के प्रांतों में कुछ। और हम चर्चा करेंगे कि जमीन से निकला दूसरा जानवर संभवतः क्या संकेत दे सकता था। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि पुराने नियम में समुद्र और रसातल से जुड़े जानवर की आकृति जैसा पहला जानवर अब एक दमनकारी बुतपरस्त साम्राज्य और उसके शासक का प्रतीक है, और वह रोमन साम्राज्य है। हालांकि यह बताना कठिन है, क्या जॉन के मन में ये दोनों बातें थीं? क्या यह सम्राट और रोम दोनों हैं, या यह केवल एक या दूसरे की बात कर रहा है? किसी भी मामले में मुझे लगता है कि पहला जानवर रोमन साम्राज्य की पहचान करने या उसके साथ पहचाने जाने के लिए है। इस पाठ के बारे में कहने वाली दूसरी बात यह है कि जैसा कि कई लोगों ने नोट किया है, जॉन एक अपवित्र त्रिमूर्ति का निर्माण भी कर सकता है जो वास्तविक त्रिमूर्ति की पैरोडी के रूप में कार्य करता है, हालांकि तीनों की भूमिकाएं बड़े करीने से अलग नहीं की गई हैं। लेकिन साथ ही प्रकाशित वाक्य के अध्याय एक और अध्याय चार और पांच में ध्यान दें, हमें त्रिमूर्ति से परिचित कराया गया था, यानी हमने जॉन की सोच के पीछे त्रिनेत्रीय संदर्भ देखे, यहाँ तक कि अध्याय एक की शुरुआत में ही पत्र संबंधी परिचय, जहाँ जॉन स्वयं ईश्वर जो था और आने वाला है और यीशु मसीह जिसने छुटकारा दिलाया है दोनों की ओर से शुभकामनाएं देता है। सारी मानवता पुजारियों का राज्य बने और पवित्र आत्मा से भी। हम अध्याय चार और पांच में देखते हैं कि ईश्वर अपने सिंहासन पर बैठा है। हम सात आत्माओं को भी देखते हैं जो कि परमेश्वर की सात गुना आत्मा है। लेकिन फिर हमें उस मेमने से भी परिचित कराया जाता है जो अध्याय पांच में मारा गया था। इसलिए रहस्योद्घाटन त्रिमूर्ति संदर्भों के साथ अव्यक्त है। तो क्या यह संभव है, जब हम अध्याय 12 और 13 पर पहुंचते हैं तो हमें एक अर्थ में एक अपवित्र त्रिमूर्ति को देखना होता है? हम बाद में अध्याय 14 में देखेंगे जहां तीनों का एक साथ उल्लेख किया गया है। प्रकाशित वाक्य में अजगर, जानवर और दूसरे जानवर को अक्सर झूठा भविष्यवक्ता भी कहा जाता है। तो क्या यह संभव है कि जॉन अब एक अपवित्र त्रिमूर्ति के रूप में सच्ची त्रिमूर्ति की पैरोडी का निर्माण कर रहा है? तो शैतान स्पष्ट रूप से स्वयं परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। शैतान वह है जिसके पास दुनिया और अन्य दो जानवरों पर प्राथमिक अधिकार है। फिर जानवर नंबर एक वह होगा, क्योंकि वह मारा गया प्रतीत होता है और उसे कुचलने वाला घाव था, ठीक मसीहा की तरह, ठीक यीशु मसीह की तरह जो अध्याय 5 में मारा गया था। अब जानवर नंबर एक का अर्थ यीशु मसीह की नकल है। और फिर जानवर नंबर दो पवित्र आत्मा की एक नकल, और उसका मुख्य काम हम अध्याय 13 के दूसरे भाग में देखेंगे, लोगों को पहले जानवर की पूजा करने के लिए प्रेरित करना है। तो यह संभव है कि हमारे पास एक अपवित्र त्रिमूर्ति है जो सच्ची त्रिमूर्ति की एक विकृत पैरोडी है, जो अब अपनी शक्ति को विकृत करती है और उस पूजा और अधिकार का नाजायज दावा करती है जो केवल भगवान और उसके मसीहा और पवित्र आत्मा से संबंधित है। तो अब मैं जो करना चाहता हूँ वह दोनों जानवरों की थोड़ी अधिक विस्तार से जांच करना शुरू कर रहा है, जिसमें उनके पीछे छिपी भाषा और वे कैसे कार्य कर रहे हैं इसके बारे में भी शामिल है। हम पहले ही देख चुके हैं कि पहला जानवर समुद्र से बाहर आता है, जो रसातल का दूसरा नाम है। अध्याय 11 श्लोक 7 में जानवर रसातल से बाहर आता है। बाद में अध्याय 17 श्लोक 8 में जानवर फिर से रसातल से बाहर आएगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह एक अलग जानवर है, नहीं हमें रसातल के अलावा समुद्र से बहुत कुछ बनाना चाहिए, लेकिन जब तक हम समुद्र को फिर से नहीं लेना चाहते, साथ ही एशिया माइनर और पाठकों के बीच की दूरी का सुझाव देते हैं। समुद्र के उस पार जहां उन्हें रोम मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यहां का समुद्र बुराई की धारणा का प्रतीक है। यह समुद्री राक्षस का घर है जिसे हमने भजन 74 और यशाया अध्याय 51 में देखा था। ये दोनों फिरौन और निर्गमन की स्थिति का वर्णन करने के संदर्भ में थे। हमने यह भी देखा है कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 में टिड्डियां अथाह कुंड से निकलती हैं। लेकिन दानियेल अध्याय 7 जहां जानवर समुद्र से बाहर आते हैं, दानियेल 7 भी यहां अध्याय 13 में प्रभाव डाल रहा है। आप जो देखना शुरू कर रहे हैं वह यह है कि जॉन एक ही समय में कई पुराने नियम के ग्रंथों को जोड़ना पसंद करता है। अक्सर ऐसे पाठ जिनका किसी प्रकार का संबंध होता है, मौखिक या विषयगत या प्रासंगिक रूप से, जॉन एक मोज़ेक का निर्माण करता है जहां वह कई पुराने नियम के पाठ लेता है और एक बाजीगर की तरह एक ही समय में कई गेंदों को रखने की कोशिश करता है, या कोई जो कोशिश कर रहा है, एक सर्कस कलाकार कई प्लेटों को एक साथ घुमाने की कोशिश कर रहा है। जॉन एक ही समय में कई पुराने नियम के ग्रंथों को घुमाने की बाजीगरी कर रहा है या उन्हें घुमाने की कोशिश कर रहा है, जो अपने साथ अर्थ लेकर आता है, जो कुछ कहने, समझाने, प्रकट करने और व्याख्या करने में मदद करता है कि जॉन ने क्या देखा। दानियेल अध्याय 7 साथ ही कई अन्य पुराने नियम के ग्रंथ उस मोज़ेक का हिस्सा हैं जिसे जॉन अब बना रहा है। तथ्य यह है कि इस पहले जानवर के भी ईशनिंदा वाले नाम हैं। यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि यह जानवर प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 में उस अधिकार और पूजा को हड़प रहा है जो केवल भगवान और मेमने से संबंधित है। दूसरे शब्दों में यहाँ जोर मूर्ति पूजक प्रकृति पर है यह जानवर और रोमन साम्राज्य। यह और भी अधिक विशिष्ट रूप से सम्राटों द्वारा देवता के कुछ दावों को प्रतिबिंबित कर सकता है। उदाहरण के लिए डोमिशियन को देवता और पूजा और सम्मान के दावों को स्वीकार करने के रूप में जाना जाता था, जिसे अब जॉन शायद मूर्ति पूजा के दावों, रोम के विकृत दावों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार कर रहा है और इसके विपरीत जो केवल सच है या जो केवल सच होना चाहिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 और 5 में भगवान और मेमना। हम पहले ही नोट कर चुके हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान फिर से इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस जानवर का वर्णन अध्याय 12 में ड्रैगन की तरह ही किया गया है। उसके 7 सिर और 10 सींग हैं, ये दोनों महान शक्ति, महान अधिकार और महान ताकत का सुझाव देते हैं। लेकिन जिस चीज की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ वह एक अनोखी चीज है जो जॉन इस जानवर के साथ करता है। जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, जॉन स्पष्ट रूप से डैनियल अध्याय 7 को चित्रित कर रहा है। जब आप मनुष्य के पुत्र के दर्शन में डैनियल अध्याय 7 में वापस जाते हैं तो मनुष्य के पुत्र के उभरने से पहले जॉन वास्तव में 4 जानवरों की आकृतियों को देखता है जो सभी 4 साम्राज्यों या 4 सम्राटों या शासकों का प्रतीक और प्रतिनिधित्व करते हैं जो आगे बढ़ते हैं और जिनके राज्य को ग्रहण किया जाता है। मनुष्य का पुत्र जो अब अधिकार प्राप्त करता है और राज्य प्राप्त करता है। लेकिन डैनियल अध्याय 7 में, ठीक है, मुझे पीछे मुड़कर प्रकाशित वाक्य के अध्याय 13 की ओर मुड़ना चाहिए। ध्यान दें कि पद 2 में जानवर का वर्णन न केवल उसके पशु चरित्र के रूप में किया गया है बल्कि उस जानवर के रूप में भी किया गया है जिसे मैंने देखा था। अत यूहन्ना को एक पशु दिखाई देता है परंतु फिर वह उसका वर्णन एक चीते, एक भालू और एक सिंह के समान करता है। यह मोटे तौर पर 4 छवियों या 4 जानवरों की आकृतियों से मेल खाता है। डैनियल 7 में डैनियल की दृष्टि से 4 जानवरों की आकृतियां। अंतर यह है कि डैनियल ने 4 अलग अलग जानवरों को 4 अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए देखा जो मनुष्य के पुत्र तक ले जाते थे। जहां अब जॉन सभी को जोड़ता है उनमें से 4 एक पशु आकृति में हैं। तो अतीत के सभी जानवर, ऐसा लगता है जैसे अतीत के सभी जानवर और अतीत के सभी राज्य अब संयुक्त हो गए हैं और इस अंतिम अभिव्यक्ति में लिपट गए हैं जो अब पहली शताब्दी के रोमन साम्राज्य के रूप में उभरा है। तो यह वैसा ही है जैसे जॉन अब जो घटित होते हुए देख रहा है, वह एक अर्थ में इकट्ठा हो रहा है और यहाँ तक कि अतीत के सभी राज्यों और शासकों पर भी ग्रहण लगा रहा है। तो ईसाई अब जिस चीज का सामना कर रहे हैं, भगवान के लोग अब जिसका सामना कर रहे हैं, वह कुछ अधिक बुरा, कुछ अधिक दमनकारी है। लेकिन फिर जॉन जो कर रहा है वह केवल यह सुझाव दे रहा है कि रोम वह सब नहीं है जो वह दिखता है। फिर से सच्चे सर्वनाशकारी अंदाज में वह रोम की वास्तविक प्रकृति और सच्चे चरित्र का अनावरण कर रहा है। रोम वह सब कुछ नहीं है जो इसे माना जाता है। रोम वैसा नहीं है जैसा वह होने का दावा करता है। यह एक अद्भुत विशाल साम्राज्य होने का दावा करता है जो लोगों के लिए शांति, समृद्धि और सुरक्षा लेकर आया है। लेकिन अब जॉन प्रदर्शित करना चाहता है, लेकिन इसके पीछे यह एक साम्राज्य के राक्षसी, शैतानी पशु चरित्र का एक मुखौटा मात्र है जो मूर्ति पूजक है, जो ईश्वर का विरोध करता है, जो ईश्वर के लोगों का विरोध करता है और उन पर अत्याचार करता है और जो हिंसा और रक्तपात के माध्यम से अपने साम्राज्य को बनाए रखता है। तो अब जॉन रोमन साम्राज्य की वास्तविक प्रकृति का खुलासा कर रहा है। यह एक भयानक जानवर है और इस जानवर के पीछे स्वयं शैतान है। अध्याय 12 में उसे बिल्कुल शैतान के समान बताया गया है जिसके 7 सिर और 10 सींग हैं। यह उत्पत्ति अध्याय 3 श्लोक 15 से शैतान की संतान है। तो रोम एक भयानक जानवर है। अध्याय 13 और पद 2 ड्रैगन के अधिकार के साथ कार्य करते हैं। इसे ले जाने की अनुमति है। इसे ड्रैगन द्वारा पृथ्वी पर अपना अधिकार चलाने के लिए नियुक्त किया गया है। और पराजित होने के बावजूद हमने देखा कि शैतान पहले ही पराजित हो चुका था। अब वह यही रास्ता अपनाएगा क्योंकि उसके पास समय कम था। वह अब रोष और क्रोध में कार्य करता है और अब वह रोमन साम्राज्य के माध्यम से दमनकारी भ्रामक अधिकार के माध्यम से ऐसा करता है। हमने यह भी देखा कि इस जानवर की एक विशेषता यह है कि उसका एक सिर घायल दिखाई देता है और यह अध्याय 13 में 2 बार दोहराया जाता है। यदि आप ध्यान दें तो जानवर का सिर जख्मी प्रतीत होता है। हमने पहले ही उल्लेख किया है कि यह उत्पत्ति अध्याय 3 और पद 15 पर वापस जाता है। लेकिन कुछ अन्य पाठ, उदाहरण के लिए यशाया अध्याय 27 और पद 1 में एक पाठ जो हमने पहले पढ़ा है, उस दिन प्रभु करेंगे वह अपनी तलवार से, अपनी भयंकर बड़ी और शक्तिशाली तलवार से दंड देगा। वह लेविथान को, उड़ने वाले सांप को, लेविथान को, कुंडली मारे हुए सांप को दंड देगा। वह समुद्र के राक्षस को मार डालेगा। यह बाद में दिलचस्प है। अध्याय 13 में जानवर का वर्णन उस व्यक्ति के रूप में किया गया है जिसे तलवार से घाव हुआ था। यह यशायाह 27 और भजन 74 जैसे ग्रंथों को प्रतिबिंबित कर सकता है जिन्हें हमने कुछ बार पढ़ा है, भगवान द्वारा राक्षस को मारने या छेदने का विचार। लेकिन यशायाह 27:1 जहां स्पष्ट रूप से वह राक्षस को पीछे पड़ी तलवार से मारता है, साथ ही उत्पत्ति अध्याय 3 भी। जॉन राक्षस को मारने के इस उद्देश्य के बारे में सोच रहा होगा, और अब राक्षस का सिर प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 में मारा गया प्रतीत होता है, लेकिन अध्याय 3 पर भी वापस जा रहे हैं। जो महत्वपूर्ण है वह यह प्रदर्शित करना और समझना भी है कि जॉन इस घाव या आघात को कैसे देखता है। मैं संदर्भ के भीतर सोचता हूँ, विशेष रूप से अध्याय 5 के प्रकाश में और विशेष रूप से अध्याय 12 में हमने जो कहा है उसके प्रकाश में, जहाँ तक शैतान को स्वर्ग में पराजित करने और गिराए जाने का ऐतिहासिक संदर्भ है। यह ईसा मसीह का खून या ईसा मसीह की मृत्यु थी। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान वे साधन थे जिनके द्वारा अध्याय 12 में शैतान को हराया गया था। मैं मानता हूँ कि यहाँ फिर संदर्भ एक बार फिर सुझाव देता है कि यह मृत्यु और पुनरुत्थान पर है कि जानवर को उत्पत्ति 3, यशायाह की पूर्ति में यह मौत का झटका मिला 27 आदि। मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान ने ही मृत्यु का आघात पहुंचाया। घाव घातक था, लेकिन अब जानवर स्पष्ट रूप से उस घाव से उबर गया है। यही कारण है कि सारी सृष्टि अब उसकी आराधना करती है। हम इसके बारे में थोड़ा और बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम एक और बात पहचाने, वह यह है कि पुराने नियम की इस धारणा के अलावा कुछ लोगों ने देखा है कि भगवान ने ड्रैगन को तलवार से छेद दिया और मृत्यु के समय शैतान की हार हुई। ईसा मसीह का पुरुत्थान, जो अब जानवर के घातक घाव के लिए जिम्मेदार है, एक संभावित पृष्ठभूमि के रूप में जानवर का सिर और उत्पत्ति अध्याय 3। इसके अलावा कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि जानवर की यह धारणा मृत प्रतीत होती है, लेकिन अब ठीक हो गई है। यह 68 ईस्वी में नीरो की मृत्यु का प्रतिबिंब है, जैसा कि परंपरा है। 68 ईस्वी में नीरो भाग गया और जाहिर तौर पर आत्महत्या कर ली, और इसने वास्तव में रोमन साम्राज्य को गृहयुद्ध में झोंक दिया। इसने इसे संघर्ष और अराजकता में डाल दिया, लेकिन रोम स्पष्ट रूप से इससे उबर गया और स्पष्ट रूप से बहाल हो गया। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि इसके कारण साम्राज्य अजय प्रतीत होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह तथाकथित मौत के झटके से उबर गया है और अब साम्राज्य अजय प्रतीत होता है। ऐसा हो सकता है, और हम कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे जहां जॉन को नीरो से जुड़ी इस परंपरा के बारे में पता हो सकता है, विशेष रूप से उसकी अपनी मृत्यु और आत्महत्या से जुड़ी परंपरा के बारे में। हम कुछ उदाहरण देखेंगे जहां यह काम आ सकता है। मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, यद्यपि जॉन इसे अपने पाठकों के साथ संबंध के डर और समझ के रूप में चित्रित कर सकता है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि वह कहानी जॉन की प्रस्तुति पर हावी नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान वे नियंत्रित विशेषताएं हैं जो मृत्यु के आघात से निपटती हैं। लेकिन हो सकता है कि जॉन रोमन साम्राज्य को एक ऐसी चीज के रूप में चित्रित करने के लिए न केवल पुराने नियम बल्कि नीरो से जुड़ी कहानी को भी चित्रित कर रहा हो, जिसे एक मौत का झटका दिया गया था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से ठीक हो गया है और अजय है, इसलिए बाकी दुनिया को उसके पीछे जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। जानवर जानवर की पूजा करना। फिर अगले सत्र में हम थोड़ा और विस्तार से देखेंगे कि यह कैसे काम करता है, खासकर दूसरे जानवर के संबंध में। जॉन क्या सोचता है, या यह प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 के पहली शताब्दी के पाठकों की विशिष्ट स्थिति से कैसे संबंधित हो सकता है? यह रहस्योद्धाटन की पुस्तक पर अपने पाठ्यक्रम में डॉक्टर डेव मैथ्यूसन हैं। यह सत्र 18 प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और 13 ड्रैगन और 2 जानवर हैं।